मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 6 सितंबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं पंकज कुमार मधेसिया, आप कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, अनंत श्रीवास्तव भोपाल मध्य प्रदेश से, और पवन कुमार गुप्ता धनबाद सीजुआ झारखंड से। तो पंकज, अनंत और पवन, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुख्य विषय के रूप में आज हम उत्तरी कोरिया और हाइड्रोजन बम के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, है ना। ये बात, इसको मैंने विषय के रूप में क्यों चुना है ये मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इससे पहले थोड़े से दूसरे विषयों पर आ जाते हैं जो यूं कह लीजिए कि संख्या में बहुत कम है, लगभग यूं मान करके चलिए कि आप नहीं के बराबर ही हैं, लेकिन फिर भी आइए जो कुछ भी है हम वे बातें कर लेते हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी म्यांमार पहुंच गए हैं, जिसका पुराना नाम वर्मा रहा है, म्यांमार। डेफिनेटली म्यांमार हमारा पड़ोसी ही राष्ट्र। कल मैंने म्यांमार के बारे में नहीं, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के बारे में इशारा आपको किया था। डेफिनेटली आज बातचीत होंगी, समझौते होंगे और तब हमारे सामने म्यांमार की पूरी पिक्चर आ चुकी होगी। तो बेहतर होगा कि हम इस पर आगे चलकर बात करेंगे जब हम सब कुछ जान चुके होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यांमार चूंकि भारत का पड़ोसी राष्ट्र है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पड़ोसी राष्ट्र यानी कि है, नॉर्थ ईस्ट का आप देखेंगे तो म्यांमार से लगा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, राइट। इसके बारे में आपको थोड़ी सी ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि मैप में ये कहां पर है, बस इतना ही। मैं ज्यादा इसके बारे में अभी कुछ बात करने नहीं जा रहा हूं। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो वैसे तो बहुत छोटी सी है, या ये कह लीजिए कि कंटेंट के रूप में है, छोटे से कंटेंट के रूप में है, तथ्य के रूप में है, अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है वो, लेकिन खबर महत्वपूर्ण है। और वो खबर यह है कि भारत सरकार ने लगभग 2 लाख कंपनियों, 2,07,000-9,000 कुछ ऐसे ही है, तो मोटे तौर पर 2 लाख कंपनियां कह लीजिए, 2 लाख कंपनियों के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। 2 लाख कंपनियां, सोच करके देखिए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का कारण यह था कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही थी कंपनियां। ठीक है, सरकार को यह हक है, उन्होंने अपने कानून के तहत इसे रद्द किया है। तो फ्रेंड्स, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक इस रूप में नहीं है कि क्यों इनके रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने चाहिए थे या नहीं किए जाने चाहिए थे, इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर है। ये कंटेंट के रूप में क्यों है, यानी कि फिर भी यह इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इस रूप में है फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो खासकर काली अर्थव्यवस्था, काले धन, एक पैरेलल इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने की हर संभव कोशिश कर रही है। देखिए, हम बीच बीच में आलोचना भी कर देते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, नोटबंदी फेल हो गया बुरी तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है। जो अर्थशास्त्र में जो रिजल्ट्स आते हैं, कुछ रिजल्ट्स तो ठीक है तत्काल दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे वक्त के बाद हमारे सामने आते हैं। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि जो ब्लैक मनी है, समानांतर अर्थव्यवस्था है, वो इतने साल से पनप रही है, इतनी डीप रूटेड ये व्यवस्था हो चुकी है कि इसे आप सोचें कि एक नियम कानून के जरिए खत्म किया जा सकता है, किसी भी नियम कानून के जरिए, या जो सरकारी विभाग हैं वो जबरदस्त रूप से कार्यवाही करना शुरू कर दें तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा अव्यवहारिक सोच होगी, थोड़ी सी अव्यवहारिकता होगी। इसको आप धीरे धीरे ही अपरूटेड कर सकेंगे, धीरे धीरे ही इसे खत्म कर सकेंगे। खत्म क्या मतलब, मिनिमाइज कर सकेंगे। अदरवाइज जाकर के देखिए, डेवलप्ड कंट्री में भी इस तरह की चीजें सुनने में आती हैं, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो दोस्तों, जो सरकार ने नोटबंदी मोनिटाइजेशन का जो स्टेप उठाया था वो सच पूछे तो काली अर्थव्यवस्था के खिलाफ ही था, रिजर्व बैंक ने कह दिया कि 99% जो करेंसी थे 100 और आपके 500 और 1000 की करेंसी थी वो 99% वापस आ चुकी है। तो अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग फोरम पर लगातार ये बात हो रही है कि नोटबंदी फेल हो चुकी है। अब आप देखिए कि ये जो 2,00,000 कंपनियों के जो रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक इस नोटबंदी से है, क्योंकि जो शेल कंपनी है, शेल कंपनी के बारे में देखिए हम लोग इससे पहले बातें कर चुके हैं और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आप इस टॉपिक को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर अच्छे से तैयार कर लें शेल कंपनी, राइट। तो ये जो अर्थव्यवस्था में जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की जो प्रक्रिया होती है या जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है या एक भारतीय पैसा विदेश में जाकर के फिर वहां से व्हाइट होकर के लौटता है, इन सारे के केंद्र में ये शेल कंपनियां ही थी। और अभी जो रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं उसमें से बहुत सी कंपनियां तो ऐसी ही हैं जिनके बारे में पता नहीं लग रहा है कि पैसा कहां से आता है। ये दूसरों को ऋण भी दे देते हैं, कर्ज दे देते हैं, लेकिन बिना ब्याज के दे देते हैं। तो भैया ऐसी कौन सी संस्था है जो दूसरों को बिना ब्याज के, बिना इंटरेस्ट के ऋण दे रही है। और फिर ये देखा गया कि कुछ समय से इनके जो अकाउंट्स थे उनमें बहुत ज्यादा पैसा जमा हो रहा है, तो भैया ये पैसा कहां से आ रहा है। तो आप देखिए कि इन सब बातों का जो पता लगा, जो सूत्र मिले, तो कहीं ना कहीं वो डीमोनेटाइजेशन से ही मिले। अदरवाइज इससे पहले भी किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया क्योंकि उस तरह की जानकारी नहीं थी। देखिए गवर्नमेंट अगर कोई भी स्टेप उठाएगी तो डेफिनेटली हमारे पास न्यायालय है, दूसरे ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां हम जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट के पास कुछ प्रमाण भी तो होना चाहिए। तो दोस्तों आप मानकर चलिए कि इस रूप में मोनेटाइजेशन के जो प्रभाव हैं वो धीरे धीरे हमारे सामने आएंगे, राइट। तो ये जो मोनेटाइजेशन की सफलता, इसका मूल्यांकन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिलहाल आपके सिविल सर्विस के लिए है, तो आप इस पर हमेशा नजर रखें और इस तरह की जो चीजें होती हैं उसे देखने और समझने की कोशिश करें कि क्या इसका सीधा संबंध मोनेटाइजेशन से है। अगर सीधा ना भी हो तो इनडायरेक्ट कोई संबंध है और उस पॉइंट को आप नोट कर लें। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा अवसर इस बात का भी है कि आप इसके बहाने अर्थशास्त्र को समझ सकें। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र विज्ञान है, विषय है, और अर्थव्यवस्था है कि जो उस विषय को इंप्लीमेंट कर रही है, है ना, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी होती है। तो इसके जरिए आप अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन के की जो सीमाएं हैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, उसको थोड़ा व्यापक बनाइए। तो मित्रों यह 2,00,000 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने के बारे में कुछ बातें थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। आज हम थोड़े से मुख्य विषय के बारे में बातें करते हैं। फ्रेंड्स मैंने कहा मुख्य विषय में हमने लिया है उत्तर कोरिया और हाइड्रोजन बम, राइट। दोनों को एक साथ क्यों लिया है इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा हम उत्तर कोरिया को देखते हैं। देखिए उत्तर कोरिया जो है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, है ना। पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस की दृष्टि से, लेकिन उत्तर कोरिया नहीं है। फिर उत्तर कोरिया के टॉपिक पर हम लोग क्यों बातें कर रहे हैं और हाइड्रोजन बम पर भी बातें कर रहे हैं दोस्तों, इसके दो कारण हैं। नंबर वन कि अब जो उत्तर कोरिया जो कुछ भी कर रहा है उसका विश्वव्यापी प्रभाव है, और अगर वो हाइड्रोजन बम और इस तरह के और विस्फोट हुए या इस तरह के आक्रमण हुए, विध्वंसकारी आक्रमण हुए, तो भारत उससे ज्यादा दूर नहीं है। उसके जद उसकी सीमाओं में भारत आएगा। और बिल्कुल ये भी कहा जाने लगा कि भैया पता नहीं दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। तो बट नेचुरल है कि चूंकि ये विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है, आप अपने सिलेबस में देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है कि हमें विश्व संगठन जो बहुत महत्वपूर्ण देश है उनके बारे में जानना है, विश्व संगठन के बारे में जानना है, विश्व के जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में भी जानना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, विश्व शांति को खतरा है और महायुद्ध की स्थिति निर्मित होती चली जा रही है, तो आपको जानना है। जहां तक हाइड्रोजन बम का सवाल है मित्रों, उसे मैंने इसलिए इसमें रखा है क्योंकि जो सिविल सर्विस का आपका प्री एग्जाम है उसमें जो साइंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए वो परंपरागत साइंस वाली बात खत्म हो गई कि आप केमिस्ट्री फिजिक्स के सूत्र कभी कभी पूछ लिए जाते थे, सामान्य सी चीजें पूछ ली जाती थी। अब जो साइंस है वो भी ज्यादातर करेंट पर आ गया है, जो उस समय की आसपास की साल सवा साल की जो घटनाएं होती हैं वहां से ही साइंस के लिए भी निकाला जाता है। तो मुझे लगा कि जो हाइड्रोजन बम है इसकी क्या प्रक्रिया है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए, तो साइंस पर भी एक थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा उत्तर कोरिया के बारे में कि क्या है। फ्रेंड्स, एक बात मैं लगातार आप लोगों से कहता आ रहा हूं और सच पूछे तो आगे भी कहता रहूंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा कि जब भी किसी स्थान का नाम आए, राष्ट्र का नाम आए, तो प्लीज आप उसे अपने मैप पर जरूर लोकेट करें। मैप में जरूर देखें कि ये कहां है। आप उत्तर कोरिया को आइडेंटिफाई करें कि वो कहां है, और इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं माफी चाहूंगा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। उत्तर कोरिया को आप देखिए, तो उत्तर कोरिया की अब लोकेशंस को देखिए प्री के हिसाब से। आपसे मैं कुछ प्रश्न जैसे अगर करूं कि उत्तर कोरिया, चलिए महाद्वीप में, तो आप बता देंगे कि किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में कहां पर है, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, कहां है वो, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब आप मैप में देखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप मैप की ही रीडिंग करेंगे, मैप को ही पढ़ेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं है, ये ईस्ट एशिया में है, ईस्ट एशिया में है, राइट। ये बहुत जरूरी है। फिर आप और जब उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, इसके एक साइड में यानी कि लेफ्ट में, उसके वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको चाइना मिलेगा। इसके बाद जब आप उसके थोड़ा सा राइट ऊपर साइड में जाएंगे तो आपको रशिया मिलेगा। ऊपर साइड में नॉर्थ में जब आप जाएंगे तो रशिया मिलेगा। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो बटने चरोले की साउथ कोरिया मिलेगा। इसका मतलब है कि ये तीन राष्ट्र हैं जो इसके बॉर्डर बना रहे हैं, चाइना, रशिया और साउथ कोरिया। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना, रशिया और साउथ कोरिया क्यों अभी जो उत्तरी कोरिया जो कदम उठा रहा है, या जो इस तरह के जो हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर रहा है, तो ये तीन राष्ट्र सबसे ज्यादा चिंतित क्यों है। जापान भी है, फिर आप वहां जापान को ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसपास ही जापान मिल जाएगा, क्योंकि इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको जापान सी मिलेगा, तो जापान भी वहीं आसपास ही है, और भी दूसरे छोटे छोटे देश हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए और जो सबसे ज्यादा आवाज मुखर करने वाले देश हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इन पर तो इमीडिएट असर होना है ना। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन बम का विस्फोट कर दिया और उससे मकान वहां के आसपास के हिल गए, और किन किन देशों के मकान हिले, ये नहीं कि केवल उत्तरी कोरिया के हिले हैं, रशिया के मकान हिल गए, चाइना के मकान हिल गए, जापान के मकान हिल गए, भूकंप आ गया 6.3 रिक्टर स्केल का, सोचिए। अमेरिका तो चिंतित है ही, क्योंकि उत्तर कोरिया जो है ना, सबसे ज्यादा जो धमकियां दे रहा है वो अमेरिका को ही दे रहा है, तो उसका चिंतित होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, आपको लोकेशन पता लग जाएगी, राइट। अब मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं जो और उत्तरी कोरिया से जुड़ी हुई है, और सिविल सर्विस की तैयारी ऐसे ही की जाती है। जो उसकी राजधानी है फ्रेंड्स, प्योंगयांग है, इसे आपको मालूम होनी चाहिए, प्योंगयांग। हो सकता है सिविल सर्विस में तो इस तरह के क्वेश्चन सब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो कोरिया है, ये एक तरह से उपमहाद्वीप था, अगर हम साउथ और नॉर्थ दोनों को मिला दें, तो दोनों को मिला दीजिए तो ये एक प्रकार से पूरा कंप्लीट कोरिया था। दोस्तों, हुआ क्या कि इस कोरिया पर पहले जापान का अधिकार था, जापान इस पर शासन करता था, लेकिन 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, जापान पर बम गिराया गया, जापान ने सरेंडर कर दिया, तो उसमें फिर ये जो पूरा का पूरा कोरिया है, ये जापान की पकड़ से आजाद हो गया, मतलब स्वतंत्र हो गया। जब ये स्वतंत्र हुआ, तब ये कोरिया दो भागों में बट गया। तो भागों में क्या बटा, इसका जो साउथ पार्ट था, जो साउथ का हिस्सा था, जिसे हम साउथ कोरिया कहते हैं, वो एक प्रकार से अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आ गया, और जो उत्तरी कोरिया था वो रशिया के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। तो अब ये जो कि रशिया के प्रभाव क्षेत्र में उत्तरी कोरिया आया, तो वहां साम्यवादी सरकार बनी, अभी भी वहां साम्यवादी सरकार है, जिसे अब हम तानाशाही सरकार कहेंगे। और ये दक्षिण कोरिया चूंकि अमेरिका के हाथ में था, तो वहां वो एक तरीके से पूंजीवादी सरकार बनी, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आज देखिए कि साउथ कोरिया तो कितना आगे बढ़ गया है ना, उसका जो डेवलपमेंट है, वो सैमसंग कंपनी आपके साउथ कोरिया की, कल्पना करके देखिए, बहुत ही जबरदस्त रूप से डेवलप्ड कंट्री हो गई है साउथ कोरिया। तो ये स्थिति हुई, और अभी जो उत्तरी कोरिया है दोस्तों, जो अभी जो संविधान वहां लागू है, बहुत ही लेटेस्ट है, 2016 में वहां का संविधान बना है। आबादी बहुत कम है, 2.5 करोड़ की आबादी है, और जो पर किलोमीटर जो डेंसिटी ऑफ द पीपल है, वो लगभग 200 के करीब, 198-200 के करीब वहां डेंसिटी है। ये उत्तरी कोरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। शासक जो है वो तानाशाह है, आप जानते हैं, किम जोंग, अखबारों में आप खासकर पढ़ ही रहे हैं। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको हाइड्रोजन बम के बारे में बता दूं, जो केवल प्री एग्जाम को लेकर है, राइट। जो हाइड्रोजन बम है इसको इसका एक और नाम है जिसे थर्मो न्यूक्लियर बम के रूप में भी जाना जाता है, थर्मो न्यूक्लियर बम के रूप में। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बम में जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली चेन रिएक्शन फ्यूजन होता है। चलिए मैं आपको इस रूप में बताऊं कि इससे पहले एक और बम था, एटॉमिक बम, परमाणु बम, जो जापान पर गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी के बाद खत्म हो गया था, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जो परमाणु बम है, परमाणु बम में होता क्या है कि उसके उसमें जब उसमें विखंडन होता है, जो उसके परमाणु होते हैं उनमें विखंडन होता है, जिसे हम कहते हैं फ्यूजन, अलग अलग परमाणु अलग बिखरते चले जाते हैं और उससे फिर ताप उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बम है इसमें उनका संलयन होता है, फ्यूजन होता है, FISION फ्यूजन, और उसमें फ्यूजन होता है FUSSION। इसको याद रखिएगा, प्री एग्जाम में इसी तरह से आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। एटॉमिक बम में फ्यूजन होता है और एटॉमिक बम में फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, राइट। और हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है, यानी कि संलयन होता है, कण एक दूसरे से मिलते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि परमाणु बम में जो प्रयोग किया जाता है, जो आपको मालूम है कि जो तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं वो आपने नाम खूब सुना होगा, यूरेनियम प्लूटोनियम। लेकिन जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम में जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो हैं ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम ये हाइड्रोजन बम के लिए है, और यूरेनियम और प्लूटोनियम ये परमाणु बम के लिए है। और चूंकि हाइड्रोजन बम में चेन रिएक्शन होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इसीलिए ये इतना अधिक विनाशकारी है। अभी जो उत्तरी कोरिया ने विस्फोट किया, जिसका परीक्षण किया है, कहा जा रहा है, और खुद उत्तरी कोरिया इस बात का दावा कर रहा है कि इसकी जो शक्ति है, जापान में 1945 में जो एटॉमिक बम गिराया गया था उससे 5 से 6 गुना ज्यादा विनाशकारी है। आप कल्पना करके देखिए, 5 to 6 टाइम्स ज्यादा विनाशकारी है। और आप जानते हैं कि इससे जो आग निकलती है उससे तो जो विनाश होता ही है, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात होती है वो होती है रेडिएशन। इससे जो विकिरण फैलता है, पीढ़ियां उससे बर्बाद हो जाती है। आप देखिए कि भोपाल में जो गैस का ही जो मामला हुआ था उसने पीढ़ियों पर प्रभाव डाला है, जो यूनियन कार्बाइड से जो गैस रिसी थी और भोपाल में हजारों लोग उस गैस से मारे गए थे, आज भी जो पीढ़ियां हैं, जो गर्भ में बच्चे थे, उन तक पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। और रेडिएशन का तो फिर मतलब जबरदस्त रूप से दुष्प्रभाव होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही संक्षिप्त में मैंने हाइड्रोजन बम के बारे में बताया है। मित्रों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब धन्यवाद देता हूं ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति, और खासकर चूंकि बहुत से जो मेल आए हैं वो टीचर्स डे पर मुझे और मेरी पत्नी को बधाई और शुभकामनाओं से संबंधित हैं, तो उनके लिए, ऐसे मेल्स के लिए मैं अलग से सभी जो लिखने वाले हैं उन दोस्तों के प्रति, मित्रों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद उन्हें देता हूं। और मित्रों, इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, आदर्श कुमार, हर्षिता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, चमकौर सिंह, प्रवीण कुमार, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब, ऋषभ राठौर मैनपुरी उत्तर प्रदेश, अंबुज शुक्ला, प्रगति वाजपेयी लखनऊ उत्तर प्रदेश, पूजा मिश्रा, ओम जी वर्मा, शालू पांडे वाराणसी उत्तर प्रदेश, राम रतन यादव रायगढ़ छत्तीसगढ़, और महिमा मित्रा मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।